Om Shanti and good evening. University and college educators conference में आए हुए पूरे देश भर से आप सभी educators का, शिक्षाविदों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है. एक बार जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं आप सभी का. आप सभी जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस की थीम है एजुकेटर्स द आर्किटेक्ट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर लाइन बोली थी एक बार, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन मैन. एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन मैन. यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर मानव के अंदर जो आंतरिक सुंदरता है उसको वो उजागर कर सकती है. हर मानव के अंदर वो आंतरिक सुंदरता है और शिक्षक ऐसा माध्यम है जो उसमें बहुत मददगार होते हैं. क्योंकि आप ही शिल्पकार हैं, आप ही वो माध्यम हैं जो भाग्य का निर्माण करते हैं. और इसलिए इस कॉन्फ्रेंस की थीम है एजुकेटर्स द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. और आज के इस रिसेप्शन सेशन में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत. इस रिसेप्शन सेशन को शुरू करते हुए हम अपने जितने आदरणीय स्पीकर्स हैं उनको बुलाना चाहेंगे स्टेज पर. मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी को. आप चेयरपर्सन हैं मीडिया विंग के, आके अपना स्थान ग्रहण करें. हम करतल ध्वनि से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. मैं आमंत्रित करती हूं मिस्टर यरमल हरीश शेट्टी जी को. आप वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन कमिटी बंत समाज खास मुंबई से आप आए हैं, आके अपना स्थान ग्रहण करें. आदरणीय प्रोफेसर नागालापल्ली नागाराजू, आप वाइस चांसलर हैं गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर से, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है. आदरणीय राजयोगिनी बी के सुदेश बहन जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन विंग के दिल्ली से, आपका भी मंच पर हम स्वागत करते हैं. आदरणीय प्रोफेसर जयदेव साहू जी, आप प्रोफेसर हैं राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईटानगर से, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है. हर कार्य की जो सफलता है उसका आधार है परमात्म स्मृति. और हम भी अपनी कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले उस परमात्मा का आह्वान करेंगे जिसको भी आप मानते हैं, वो भगवान ईश्वर खुदा वो परमात्म शक्ति, उसका हम आह्वान करते हैं. दो मिनट हम उसकी याद में बैठेंगे.
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान. ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान. उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान सबको वो सुख देता रे शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहां सुंदर रचता अपना जहां ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान।
ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी कि मंच आसन हमारे आदरणीय स्पीकर्स का बुकेस और बैजेस के द्वारा उनका स्वागत करें। आदरणीय करुणा भाई जी, सुदेश दीदी जो खास दिल्ली से आए हैं, मिस्टर यरमल हरीश शेट्टी जी, जयदेव साहू जी, प्रोफेसर नागालापल्ली नागाराजू जी अगर आ चुके हों तो वो अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। आप सभी ने ऐसा दौर देखा होगा जब मोबाइल हम लोगों के पास नहीं था। सभी ने देखा है? हाथ उठाएंगे, सभी ने देखा है? उसके बाद 1G आया, हम मोबाइल पर क्या कर सकते थे? बात कर सकते थे। लेकिन जब मोबाइल पर बात करते थे तो क्या होता था? आउटगोइंग और इनकमिंग क्या हो जाता था? पैसा कट जाता था। उसके बाद क्या आया? 2G आया। 2G में क्या होता था? 2G में आउटगोइंग कॉल जो होती थी उसी में पैसा कटता था, लेकिन आप उस पर कोई वीडियो या इंटरनेट नहीं देख सकते थे। फिर 3G आया। 3G जैसे ही आया तो इंटरनेट और वीडियो देखना क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया 4G। 4G जैसे ही आया इंटरनेट फ्री हो गया और साथ में आप वीडियो कॉल के साथ साथ आप क्या देख सकते थे? मूवीज भी देख सकते थे। और अब क्या आने वाला है? 5G भी लॉन्च हो गया है। उसके बाद शायद 6G आएगा, 7G आएगा, 8G आएगा और शायद वो लोग कुछ करेंगे कि चांद और धरती से भी आपस में क्या की जा सके, बात की जा सके। कहने का भाव ये है 1G आए, 2G आए, 3G आए, 4G आए, 5G आए या 10G भी आ जाए, लेकिन अगर हमारे जीवन में एक अच्छे गुरुजी नहीं आए तो जीवन में कभी भी हमको ना सफलता मिल सकती, ना हमें जो हम चाहते हैं जीवन में हम उसको पा सकते हैं। और वही सच्चे गुरु, अच्छे गुरु, एक अच्छे शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं जीवन में प्रत्येक इंसान के जीवन में माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, संबंधी होते हैं, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए? साथ साथ एक अच्छा शिक्षक चाहिए जो इंसान के भाग्य का निर्माण कर सके, उसे एक अच्छा इंसान बना सके। वो एक ऐसा अच्छा इंसान जिसमें नैतिकता हो, जिसमें दैवी गुण हो, जिसमें पेशेंस हो, टॉलरेंस हो, कंपैशन हो, लव हो। ये सारी टीचिंग्स कहाँ से मिलती हैं? एजुकेटर्स से मिलती हैं, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट व्हाट यू टीच, इट्स मच मोर अबाउट इंस्पायरिंग। जब आप अपने जीवन से लोगों को इंस्पायर करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी नहीं जानते कि कितना एक कोई एक स्टूडेंट के जीवन में कितना बदलाव आ सकता है, कितना परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसे शिक्षकों का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस हमारे बीच में प्रोफेसर नागालापल्ली नागाराजू जी भी पहुंच चुके हैं। हम बीके बहनों से कहेंगे कि उनका पुष्पों के साथ और बैजेस के साथ उनका स्वागत करें। और इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय प्रोफेसर जयदेव साहू जी को कि आके वेलकम स्पीच दें। आप प्रोफेसर हैं राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईटानगर के, आदरणीय प्रोफेसर जयदेव साहू जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इस महान कार्यक्रम में ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी शिक्षाविद ये शिक्षा अनुष्ठान में पहुंच चुके हैं। 4 दिन तक विचार विमर्श करेंगे कि कैसे हम टीचर्स सारे विश्व को परिवर्तन कर सके। तो इस कार्यक्रम में जिसे कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तय, शिक्षा वो चीज है जो सबको मुक्ति प्रदान करे। तो मुक्ति किसको प्रदान करना है, क्या चीज से मुक्ति पाना है? ऐसे तो देखने से तो हम लोगों का आजादी का तो 75 साल हो चुका है, तो इस कड़ी में फिर भी आप सभी शिक्षाविद यहां उपस्थित हुए हैं, विशेष करके आज इस सभा में हम पहले तो स्वागत करते हैं जो सबसे जो बड़े जी यानी गढ़ का आह्वान करते हैं, क्योंकि बहन जी अभी बताए थे 1G 2G 3G 4G गुरु जी, लेकिन जो गुरु जीओं का भी गुरु जी है, जो सबसे बड़े जी है, परमात्मा का स्वागत करते हैं तहे दिल से, क्योंकि उनका अगर सहयोग, सुभावना, शुभकामना नहीं होगा या नहीं होता तो ना आप सभी भी पहुंच पाते, ना हम सभी भी पहुंच पाते, ना हम सभी एक हो सकते थे। तो हम सभी उस परमात्मा को स्वागत करते हैं इस प्रांगण में, ताकि इस कार्यक्रम अच्छे से चले और हम सभी का कल्याण हो और सारा विश्व का मंगल हो। इस कड़ी में हमारे बीच में हमारे आज के चेयरपर्सन रमा कुमार करुणा भाई जी हैं, जो चेयरपर्सन मीडिया विंग के हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था का स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो आज उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हैं आप सभी को अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो उनको भी हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से तथा हम सभी इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी। उसके साथ साथ हमारे बीच में आज की गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे प्रोफेसर एन नागराजू जी, हमें विशेष करके मेरे को खुशी भी हो रही है और मैं के सुकून भी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि नागराज जी जो कि हमारे कलीग हैं, अभी वो वाइस चांसलर बन चुके हैं संबलपुर यूनिवर्सिटी के, लेकिन वाइस चांसलर जैसा आप सभी जानते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी का जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने के बावजूद बिजी तो रहते हैं, लेकिन बिजी के होने के बावजूद भी वो समय निकाल करके यहां पहुंचे हैं हम सभी, तो इसलिए उनको भी हम ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से तथा हम सभी की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, प्रोफेसर एन नागराज जी। हम सभी अरुणाचल यूनिवर्सिटी में एक साथ में ज्वाइन किए थे, कार्य किए, काफी दिन रहे, फिर बाद में उन्होंने भाई संस्था भी बन चुके हैं। तो उसके साथ साथ हमारे बीच में एमएल हरीश सेट्टी जी हैं, मिस्टर यरमल हरीश सेट्टी जो कि वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन कमिटी बंद समाज मुंबई। तो ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उस समाज का वो शिक्षा अनुष्ठान है, तो एजुकेशन कमिटी के तरफ से वो उनका वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो वो अभी अपना समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो भी अपना अनुभव साझा करेंगे, तो हम सभी भी उनका अनुभव से लाभान्वित होंगे। उनको भी हम तहे दिल से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से तहे दिल से हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में आप सभी देख रहे हैं कि हमारे सुदेश दीदी जी हैं जो कि जोनल कोऑर्डिनेटर एजुकेशन विंग दिल्ली जोन से हैं। वो काफी पुराने हैं, अनुभवी हैं, राज्य की शिक्षिका हैं और खास करके जो हमारे एजुकेशन का कार्यक्रम चलता है उस कार्यक्रम को वो दिल्ली जोन का वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जोनल कोऑर्डिनेटर है वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, तो उनको भी हम सभी की तरफ से जोरदार करताल से उनको भी स्वागत किया जाए। तो ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी, उसके साथ हमारे जो आपकी इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर स्टेज कोऑर्डिनेटर हैं सुप्रिया बहन जी जो कि अभी इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तथा वो भी सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं लेकिन राज्य को थर्ड लाभ आप लोग इस कार्य तीन दिन का कार्यक्रम में आप लोग देखेंगे, आगे भी चल करके और भी चर्चा होगा जो राज्यों का थर्ड लाभ करके के है, कैसे हम राज्यों का माध्यम से हमारा मन का सोच को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। सोच बदलेंगे तो हमारा जिंदगी बदलेगा, जिंदगी बदलेगा तो विश्व बदलेगा। तो वो जो थर्ड लाभ है उस लैबोरेटरी उसको कहा जाता है, तो उस कार्यक्रम का वो भी कोऑर्डिनेट करती है। तो सुप्रिया बहन जी जो कि हमारे बीच में है और वो भी प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। उसके साथ साथ ये तो हो गया मंच के ऊपर में, लेकिन मंच का वैल्यू तब तक है जब तक मंच के सामने भी कोई व्यक्ति उपस्थित है। तो विशेष करके देश भर से आप सभी इतने शिक्षाविदों का आना हुआ है अपना अपना समय निकाल करके, क्योंकि अभी बिजी समय चल रहा है, एग्जामिनेशन का भी समय आने वाला है, तो इस कार्यक्रम के बीच में भी बिजी समय में भी आप सभी देश भर में अपने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज तथा जो भी शिक्षा अनुष्ठान है वहां से आकर के आप यहां पहुंचे हैं। तीन दिन आप यहां पर रहेंगे। हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को भी तहे दिल से बहुत अंदर से दिल से आप सभी को स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो सभी जोरदार करताली से हम सभी अपने आप को स्वागत करने करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो हमारे बीच में हमारे मृत्युंजय भाई जी हैं तथा और भी हमारे बड़े बड़े भाई जी हैं, दीदियां हैं, सब लोग बैठे हैं, सामने बैठे हैं, आप सभी को भी देख रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में भले मंच तो नहीं, मंच के नीचे जो बैठे हैं तो उनका बिगर भी ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता या शोभा नहीं देता। तो इसलिए आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय आप सभी को जानते होंगे कि यहां पर सिखाया जाता है, जैसे अभी तो अभी चलेगा कि टीचर्स और एजुकेटर्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो भविष्य का निर्माता है शिक्षक, जो है वह भविष्य निर्माता है। लेकिन शिक्षा क्या चीज है? अगर शिक्षा क्या चीज अगर समझ में नहीं तो फिर निर्माण क्या करेंगे? तो शिक्षा का यह नहीं कि जैसे कहा भी जाता है अभी का जो प्रेजेंट कंडीशन में जो शिक्षा हो चुका है, एजुकेशन मेक्स मशीन टू एक्ट लाइक मैन बट मेक्स मैन एक्ट लाइक मशीन्स। ये अभी हकीकत है। जो शिक्षा का परिभाषा भी हो चुका है कि हम तो मशीन बना लेते हैं जो कि आदमी जैसा वो काम करने लग जाता है, आदमी जैसा एक्टिविटी करने लग जाता है, लेकिन उसके बदले में हम आदमी को बनाते हैं ऐसे जो कि वो मशीन जैसा काम करने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर में जो भावना होना चाहिए था, जो फीलिंग होना चाहिए था, जो कंपैशन होना चाहिए था, जो काइंडनेस होना चाहिए था, जो सद्भावना होना चाहिए था, उसका कमी हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं दुनिया में तो शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है, अभी जैसे 21st सेंचुरी अभी 5G जाके 10G भी आ जाएगा, लेकिन ये सब होते हुए भी दुनिया में बुराई बढ़ रहा है ना घट रहा है? आप सभी को मालूम है दुनिया में शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर माना लिटरेसी परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन जो सही शिक्षा है वो समाप्त होते जा रहा है। कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या वो चीज है जो एजुकेटेड पर्सन है उसका पहला क्राइटेरिया है कुछ विनय भाव लाना है। लेकिन तो विनय भाव अगर नहीं है चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो जाओ, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर विनय भाव नहीं आया है, गुणवान नहीं बने हैं, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो मूल्य को, जीवन को मूल्यवान बनाना, वो मूल्य शिक्षा दे सकता है, तो वो शिक्षा कहां से मिलेगा? एक बार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां पर आए हुए थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने एक बताए थे, हमको साइंस तो बहुत कुछ दे दिया है, हम मछली की तरह पानी के अंदर में तैर सकते हैं, पंछी की तरह आकाश में उड़ सकते हैं, चंद्रलोक में पहुंच सकते हैं, लेकिन साइंस हमको बहुत साधन दे दिया है, लेकिन साइंस को कैसे यूज करना है, उसको कैसे सही दिशा में यूज करना है, वो संस्कार कहां से मिलेगा? तो उनका ये कहना था, इसी सभागार में कहना था कि उसके लिए माउंट आबू आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है जो कि आप सभी माउंट आबू में पहुंच चुके हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था में पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। तो नम्रते फलिनो वृक्षा, नम्रते गुणिनो जनाहा। तो शिक्षा, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने बोले थे कि मैन मेकिंग एजुकेशन, ये नहीं कि हमको सिर्फ डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या बनना है। इवन भी जब हम लोग बोलते हैं कि एम ऑफ द लाइफ, बच्चों से भी ऐसे लिखाते हैं, वही सब बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऑफिसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी बन जाना है, लेकिन पहले आदमी बने वो कोई नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तो इसलिए हम सभी शिक्षाविदों का स्वागत के साथ साथ हम ये अनुरोध करेंगे जो सही शिक्षा है कि जो आप जीवन को दिशा निर्देश दे। अब्राहम लिंकन का बात अगर देखेंगे तो उन्होंने भी उसी दिशा पर बोले थे कि हमको भी जो टीचर जो होते हैं वो एक लॉन्चिंग पैड, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि लॉन्चिंग पैड के बिगर जैसे रॉकेट ऊपर जा नहीं सकता है, तो उसी प्रकार का एक गुरुजी के बिगर, शिक्षक के बिगर, सही शिक्षा के बिगर सही रास्ता एक शिक्षक छात्र को मिल नहीं सकता है, विद्यार्थी को मिल नहीं सकता है। हमारा भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा पहले से रहा है और गुरु शिक्षा परंपरा के साथ साथ जो गुरु होते हैं वो मार्गदर्शन करने वाले हैं। गुरु जो कि गुणातीत और रूपातीत, जो गुणों से भी परे और रूपों से भी परे, तो उसी संदर्भ में तो वो जो परमात्मा है उन्होंने जो आकर के शिक्षा दे रहे हैं, तो हम तो सभी शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारना है, उसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में राज्यों का मेडिटेशन सिखाया जाता है तथा और भी सही जानकारी दी जाती है। जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए दो चीज की जरूरत है, एक तो सही जानकारी, ट्रू अवेयरनेस, ट्रू नॉलेज। मैं इसको ये एम्फासिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग को बहुत सारा गलत फहमी के अंदर में हम लोग चल रहे हैं, गलत जानकारियां दिया जा रहा है और दिया भी गया है, और हम लोग उसी हिसाब से हमारे बिलीफ सिस्टम के उल्टा करके बैठे हुए हैं। तो उसी हिसाब से हमको सही जानकारी लेना है और सही जानकारी को प्रैक्टिकल करने के लिए अंदर की ताकत की जरूरत है। तो वो दो चीज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है। अब ये सम्मेलन के अंदर में ये चिंतन मंथन शिविर में आप सभी का चिंतन मंथन भी चलेगा, आप लोग सभी अनुभव भी करेंगे कि इसे राज्यों का अनुभव करना है, तो उसको करने के बाद आप खुद अनुभव भी जब बनेंगे तो जाकर के आप विद्यार्थियों को भी उसी प्रकार का मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसी शुभ आशा के साथ, इसी शुभ विश्वास के साथ आप सभी का पुनः प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहू जी का। आपने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि शिक्षा हमको नैतिक मूल्य सिखाती है, और एक जगह बहुत सुंदर मैंने पढ़ा था कि एजुकेशन हैज बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम थ्रू विच वी वेस्ट हाफ ऑफ आर लाइफ टू लर्न हाउ टू वेस्ट द रिमेनिंग हाफ ऑफ आर लाइफ। यानी अपना आधा जीवन हम व्यर्थ गवा देते हैं और उसमें सीखते क्या हैं कि जो बाकी हमारा आधा जीवन है उसको हम कैसे व्यर्थ गवाएं। कहने का भाव यह है कि अगर हम डॉक्टर्स भी बन गए, इंजीनियर्स भी बन गए, पॉलिटिशियंस भी बन गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बन गए, लेकिन अगर हमारे जीवन में वो लव नहीं है, वो कंपैशन नहीं है, एक दूसरे के लिए वो सम्मान की भावना नहीं है, तो ऐसी शिक्षा का भी क्या अर्थ है। यहाँ एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक गुरुजी थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मैं आपके सामने एक कहानी रखता हूँ और आपको मुझे ये बताना है कि ये इस कहानी में गलती कहाँ है। तो गुरु ने कहानी शुरू की, उसने कहा कि बुद्धा एक बार अपने शिष्यों को एक प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते समय उन्हें एक जोर से एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आई, तो बुद्धा रुक गए और वो ध्यान में सुनने लगे कि ये कौन व्यक्ति है जो पुकार रहा है, चिल्ला रहा है। तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से जाना कि एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया था और वहां से वो चिल्ला रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने, उन्हें आभास हुआ कि अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए थे और उसके एवज में आज इसको ये सजा मिल रही है। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या इसने अपने जीवन में कोई पुण्य का भी काम किया है। तो देखा कि एक बार एक स्पाइडर जा रहा था, मकड़ा जा रहा था, तो उस व्यक्ति ने उसको बचा दिया था, उसको मारा नहीं। तो बुद्धा ने उस मकड़े को, स्पाइडर को कहा कि आप एक जाल बुनो ताकि वो उस गड्ढे में नीचे वो जाल जाए और वो उस जाल के सहारे वो व्यक्ति बाहर आ जाए। तो स्पाइडर ने जाल बुना और जाल जैसे जैसे बुनता गया वो नीचे तक आया और वो व्यक्ति उस जाल को पकड़कर ऊपर आने लगा। लेकिन जब वो ऊपर आ रहा था तो उसके साथ और भी कुछ लोग थे जो वहीं गड्ढे में उसके साथ गिरे थे, तो उन्होंने भी उसको पकड़ लिया। अब जब व्यक्ति ऊपर आ रहा है तो उसके मन में एक बात आई कि इतने सारे लोग अगर मेरे साथ ऊपर आएंगे तो ये कहीं टूट ना जाए, ये जो एक जाल एक रस्सी का काम कर रहा है ये टूट ना जाए और कहीं मैं गिर ना जाऊं। और यही हुआ, वो गिरा। लेकिन अब बुद्धा जब उसको देख रहे थे तो अब उसकी पुकार को उन्होंने नहीं सुना और आंखें बंद कर ली। तो गुरु जी ने फिर उसके बाद अंत में पूछा अपने शिष्यों से, अब बताइए इस कहानी में कहां गलती है, बताइए आप, आपको क्या लगता है इस कहानी में कहां मिस्टेक है? कहां मिस्टेक है? नेगेटिव थॉट है। किसका नेगेटिव थॉट है? जो ऊपर जा रहा व्यक्ति, उसका नेगेटिव थॉट है। अच्छा, लेकिन बुद्धा ने मदद दोबारा क्यों नहीं की? पहले में बुद्धा ने आंख खोल के मदद की, दूसरे में बार में मदद नहीं की। अच्छा, और कोई गलती है इस कहानी में? सेल्फिशनेस। अच्छा, और कोई और गलती दिखाई देती है इस कहानी में? आप में से कई लोगों ने बोला सेल्फिशनेस, लेकिन गुरु जी ने कहा कहानी में गलती क्या है कि जो एक एनलाइटेंड व्यक्ति होता है, जो सही रूप में ज्ञानी होता है, वो कभी डिफरेंस नहीं करता है, वो कभी जजमेंट नहीं देता है, जजमेंट को कभी वो हाथ में नहीं लेता है कि पहले मैं कंपैशन दिखाऊंगा, लव और कंपैशन दिखाऊंगा उस व्यक्ति के लिए, लेकिन बाद में अगर मैं देख रहा हूं कि वो अच्छा कर्म नहीं कर रहा है या वो कुछ नेगेटिव कर रहा है, तो मेरा लव और कंपैशन उसके लिए खत्म हो जाए। गुरु जी ने कहा यहां कहानी में गलती है, क्योंकि कोई भी एनलाइटेंड व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी को प्यार देना है, सम्मान की भावना रखनी है, उसे कंपैशन देना है, तो वो हमेशा के लिए होता है। और यही परमात्मा, जो सही रूप में सद्गुरु हैं, हम सबके शिक्षक हैं, वो हमको सिखाते हैं हर एक आत्मा के लिए सद्भावना, हर एक के लिए प्यार की भावना, हर एक के लिए सम्मान की भावना, और सदा, कभी कभार नहीं। किसी ने अच्छा किया तो हमने खुश होके उसके लिए कुछ अच्छा कर लिया, और कहीं कहीं अगर हमें लगा वो कुछ गलत कर रहा है तो कई बार मॉरल पुलिस हम खुद ही बन जाते हैं कि अब इसकी मदद नहीं होनी चाहिए, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही हुआ। तो परमात्मा हमको ऐसी शिक्षा सिखाते हैं, और ऐसी ही शिक्षा आप भी यहाँ पे आए हैं, उस परमात्मा के ज्ञान को आप और सही रीति से अपने जीवन में आप सुन पाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर एन नागाराजू जी को, जो वाइस चांसलर हैं गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर से, खास आप उड़ीसा से यहाँ पे आए हैं। एंड यू हैव मोर देन 33 ईयर्स ऑफ टीचिंग, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और इसमें 18 साल आपने एज अ प्रोफेसर अपनी सेवाएं दी हैं। प्रोफेसर राजू हैज वर्कड एज अ प्रोफेसर एट राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश फॉर मोर देन अ डिकेड। You have also worked as an academic advisor of Adi Kavi Nannanne University at Rajahmundry in Andhra Pradesh and as a visiting faculty at Sri Satya Sai University Puttaparthi. तो ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को हम निमंत्रण देंगे यहाँ पे आके आप अपने ज्ञान रत्नों से हमको लाभान्वित करें। प्रोफेसर एन नागाराजू जी।
ओम शांति, आप सबको नमस्कार। आई हैव बीन ट्राइंग टू कम टू दिस blessed place since couple of years and managed to come here only in my third attempt. Maybe an opportunity to be with you all and more than saying something, learning from this center, the both for meditation and spirituality. I just have a couple of points to discuss along with you in this conference of educators. Probably you might have heard about the new education policy. When the new education policy was launched, the chairperson of the new education policy, Sri Kasturi Rangan, introducing the policy, said three things. First, this is a policy which tries to unite the fragmented education system of the country. In other words, this is a policy which likes to link the entire education system right from UKG to PG and PhD. Like just now, our sister has told, all along this fragmented system, we are entering and spending half our life, wasting half our life, only to learn how to waste the rest of our life. Now, this system needs to be functional. This system needs to be functional in a very effective and in a very individual and nation-building way. So that is the aim of this system. And then he came to the second point, which is very relevant for a conference like this. He said, we are putting the teacher, guru, back at the center of the system. We are going to give the teacher what he ought to do to make the system effective and relevant, and more importantly, connecting back to the past of this great civilization. I wouldn't call it nation, but a civilization. How do you put? Then he gave one example. The example is that when Ganga came down after this Bhagirathi tapasya, down to the earth, the force with which it came, probably earth would not have accepted. So Bhagirath prayed for somebody like Shivaji who can accept, you know, take that force and make it a smooth fall on the surface of the earth. And the teacher has to play that role of a Bhagirath in the learning life of a student. And how that teacher is going to pay, he says, when we learn, basically we are making the student, the learner, active. Sometimes a good student becomes overactive. And when the student becomes in that conscious effort to learn, becomes overactive, you have to see to that he doesn't lose the harmony. And sometimes the student just remains inactive. He doesn't respond. You try hard to make him active. He hardly becomes active. So the teacher there has to make him active. So from the lower level of the consciousness, he has to be brought up to the level of learning, whatever stage he is put in. So this balance between overactive eagerness and or maybe the inactive mind, which is not able to learn, the role of the teacher is defined in this sphere. And this role he has to perform. And how does he perform? If the student becomes overactive and loses the balance, he has to put harmony back into the life of the student. Whereas in the inactive student or inactive learner, he has to ignite. And this is where the teacher has to be endowed with knowledge, but other qualities. And primary quality in that kind of role a teacher is going to perform, the primary quality is compassion. Like sister has said, once a student or maybe a shishya went to a writer who is known all over the world as a great storyteller, story writer. And he said, Guruji, what do I do first to be a writer? I don't aspire to be as good a writer as you are, but I am aspiring to be a somewhat relevant writer. And he told about six qualities, but he emphasized primarily on one quality, and that is, he said, first, be compassionate. First, be compassionate. And for you to be compassionate, you have to be empathetic. You have to get into the mind. You get into the thought process of your reader and your learner and see what is his predicament, mental predicament, or what level of consciousness is there, and then address that. That level of compassion is what is required of a teacher. Unless a teacher is compassionate, unless a teacher identifies with the condition or predicament of the learner, probably he will not be able to connect, and forget about communicate, but he cannot connect with the student. That is what this role of the student emphasizes. And Kasturi Rangan also told one thing, like many stories in our lore, in our ancient lore, talks about, and we do develop not just the teacher but the learner only when we connect or reconnect back to our civilizational values. The break, the gap over the years that India suffered, that gap, that break has to be addressed only the way, I mean, to address that gap is the way best looked after is to connect back to our values. And those, now we need all the educators, be it a school teacher, be it a university teacher, we need first to learn how to connect back to our civilizational values. And only when we connect back to our civilizational values, probably we infuse that consciousness and the sattva guna, that, you know, our knowledge, our indigenous knowledge talks about, is nothing but that harmony between the overactiveness and the underactive, you know, inactivity. And that harmony is achieved only through connecting back to our values. And that harmony is nothing but one of the sattva guna of the trigunas. And that also is a path to liberation. So this conference may be an opportunity for us, an occasion for us to see how we learn to connect back to our values. And I am very, very happy to know that here there is a thought lab coordinated by Sister Supriyaji. And having come here, I am very, very conscious and curious to know how this thought lab works and how it can help all of us, you know, teachers, to do our duty the best way possible. Another thing probably I will tell you and end my talk is the learning of Sanskrit in the new education policy. there is an emphasis on Sanskrit, not just because it is one of the oldest languages the world has seen, but the kind of thought it can give us in our effort to connect back to our civilizational values. So probably that is another aspect we can think of while discharging our duties as a teacher. Or maybe the best word for a teacher is a teacher learner. Hope this conference will give all of us something to take back and take back to our, you know, professions as teachers. Thank you all. Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नागराजू जी का. आपने बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि अगर हमको मूल्य देने हैं तो सबसे पहले हमें खुद मूल्यवान होना होगा, और एक एजुकेशनिस्ट के लिए सबसे बड़ा मूल्य होता है कंपैशन, टू बी कंपैशनेट. लेकिन ये मूल्य भी आएंगे कैसे? जैसे एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी इंटरेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स ने पूछा, सर हु आर यू? तो अब्दुल कलाम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम अवेयर. स्टूडेंट्स ने पूछा, नहीं सर हु आर यू? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ना आई एम अवेयर, यानी मैं कौन हूं? का उन्होंने जवाब क्या दिया, मैं जागृत हूं. अगर हमारे अंदर जागृति होती है, वो अवेयरनेस होती है, तो वो मूल्य अपने आप आ जाते हैं. और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर वो जागृति लेके आता है स्वयं की, कि मैं स्वयं कौन हूं, और उस परमात्मा की. और इसी जागृति को लाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय सुदेश बहन जी को. आप डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा सेंटर पालम विहार के गुड़गांव में. आप नेशनल प्रमोशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं वैल्यू एजुकेशनल कोर्सेज के, और एजुकेशन विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली जोन में. और थॉट लेबोरेटरी की जो अभी बात हो रही थी, आपने भी नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही सुंदर थॉट लेबोरेटरी खोल रखी है, जहां पे स्टूडेंट्स फैकल्टीज को बहुत लाभ मिलता है. तो मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय सुदेश बहन जी को कि आके हमको थोड़ा मेडिटेशन का अनुभव कराएं.
ओम शांति. सभी बोलेंगे ओम शांति. अंदर से बोलिए ओम शांति. आज हम सभी बहुत सुंदर सभागार में बैठे हैं, जो सुप्रीम टीचर परमात्मा हम सभी के परम शिक्षक हैं और वैल्यू के सोर्स हैं. ऐसे सुप्रीम टीचर के ज्ञान सरोवर हार्मनी हॉल के अंदर, और उसमें भी एक विशेष कॉन्फ्रेंस जिसका आप टॉपिक देख ही रहे हैं, एजुकेटर्स द नई पीढ़ी के शिल्पकार, कैसे हम एक शिल्पकार का कार्य करते हैं. तो मंचासीन आदरणीय विद्वान भ्राता जी एवं सुप्रिया बहन, और सभा में उपस्थित भाई एवं बहने, और साथ साथ हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी और मुकेश भाई जी, आप सभी का भी बारंबार हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अपना भी स्वागत करेंगे, और परमात्मा के घर में पहुंचने के उपलक्ष्य में अपने को आप धन्यवाद भी देंगे. तो ये आज ऐसा अवसर है, तो आज जगने का अवसर है, सोने का अवसर नहीं है. तो प्यारे भाइयों बहनों, आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप सभी ने एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी की होगी, तो क्या आपको कभी उसमें यह सुनाया गया, बताया गया कि जब आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो उसमें पॉजिटिव कैसे सोचना है? कोई हाथ खड़ा करके बताए, क्या यह शिक्षा दी गई कि आपके सामने एडवर्स सिचुएशंस हो और उसमें आपको कैसे पॉजिटिव सोच करके अपने को स्टेबल रखना है, कैसे इन रिलेशनशिप को बना करके रखना है, ये हमको एजुकेशन दी गई? क्या कहेंगे? ऐसी एजुकेशन हमको दूर दूर तक भी मिलती नहीं है, लेकिन ये आज आप सभी का सौभाग्य है। कम बात नहीं है आप जो इतनी दूर दूर से यहां पर पधारे हैं और डिफरेंट स्टेट से यहां पर आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से, तो ये आपका बहुत ऊंचा भाग्य है जो आपके अंदर ये अवेयरनेस लाई जा रही है। और साथ साथ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरी ही वर्ल्ड को कवर करता है, जिसमें किसी भी जाति का, उम्र का या कल्चर का, किसी भी प्रकार का, रंग भेद का कोई भेदभाव नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर उम्र के कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन ऐसी है ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जिसमें हर उम्र के व्यक्ति आते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल और जो शरीर है उसकी शिक्षा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंदर में जो बीइंग है, कॉन्शियस एंटिटी है, उसकी शिक्षा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये ऐसा वंडरफुल ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो हमारे को इतना अंदर से खोलता है, आंखें हमारी जो है बंद हो चुकी हैं, तीसरा चक्षु हमको देता है। तो ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमारे अंदर में जो इतनी शक्ति है जिसको हम आज जान ही नहीं रहे हैं, 100% जो हमारे अंदर शक्ति है उसमें से केवल 10% हम यूज कर रहे हैं, मन की जो शक्ति है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की सेइंग है, लेकिन बाकी 90% हम वेस्ट कर रहे हैं। और आपको जब जाने का दिन आएगा तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अब हम 90% यूज करेंगे और 10% चलो कहीं कुछ थोड़ी बहुत बात में चली जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपका रिवर्स हो जाएगा। ये मैं दावे से कहती हूं कि आप लास्ट डे में आप ऐसा कहेंगे। तो यहां पर हमारे अंदर शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा जो सब्जेक्ट है मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन हमको अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए उजागर करता है। आप सभी भी सीखना चाहते हैं मेडिटेशन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये मेडिटेशन की हमें जरूरत है? कौन कौन समझते हैं हमें जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है बताएं जी? वीक हो गए हैं, विल पावर कम हो गई है, वेरी गुड। एनी अदर फ्रॉम हियर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम जो है जनरली स्टूडेंट्स के सामने भी बहुत रहती है, ओवर थिंकिंग की। वो अपनी थिंकिंग को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, जरा सी कोई बात हमारे को कह देता है, आपकी कोई बुराई कर देता है, या आपसे थोड़ा सा नजरें चुरा करके कोई निकल जाता है, तो आपके मन में जैसे ना एक नेगेटिव सी बात आ जाती है, आपको वो बात पिंच हो जाती है कि उसने ऐसा कैसे कह दिया। होता है ना ऐसा? कौन कौन समझता है ऐसा होता है? होता है, होता है। तो इसका मतलब क्या है डियर ब्रदर एंड सिस्टर? इसका मतलब है हम अंदर से बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, मेंटली हम बहुत वीक हो गए हैं। उसी वीकनेस को ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कवर अप करती है। आप स्वयं अनुभव करके जाएंगे, इसके अनेक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं जो आज शेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम बताते हैं कि हर इंसान इस ऑर्गेनाइजेशन में जब पढ़ाई पढ़ता है तो उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है। तो ये मेडिटेशन वैसे भी आप जानते हैं लैटिन लैंग्वेज से आया है, और जिसका मीनिंग होता है टू हील मेंटली, सोशली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। अब हमारे मन के अंदर जो है कमजोरी आई है, उस मन की कमजोरी को हटाने के लिए ये मेडिटेशन है। तो आपको मैं इसका एक प्रोसेस बताती हूं कि इसके पीछे क्या प्रोसेस है, क्या जो है इसके अंदर सिस्टम है जो हमारे मन में ये परिवर्तन आता है। हमारे मन के अंदर जो परिवर्तन आता है वो हमारे अंदर के सोचने से आता है। हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड है और हमारी बॉडी में भी आप देखते हैं कोई जरा सी चोट कहीं लग जाती है तो उसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं तो वो अपने आप से हील अप हो जाती है, घाव अपने आप से हील अप हो जाता है। तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है, मानते हैं आप ये सब? हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग पावर है। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक मन को हील करने की पावर है। और वो हीलिंग पावर कैसे जनरेट होती है, इसकी क्या टेक्निक है, जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपको कोई मेडिटेशन की कमेंट्री रटनी नहीं पड़ेगी या आपको कोई चलानी नहीं पड़ेगी। आप जब सिचुएशन आई उसी के हिसाब से अपने आप को बदल लेंगे। तो आपको बताते हैं कि जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हैं, ब्रेन नहीं सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। उसका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव में चेंज होने लगता है। अब आप कहेंगे वो पॉजिटिव अफर्मेशन हम कैसे सिलेक्ट करें? तो आप देखिए, अगर आप दुखी हैं, अगर आप अशांत हैं, आप अशांत हैं, आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, आप अशांत हैं, तो अशांत का ऑपोजिट क्या होता है? शांत। अशांत क्या है? नेगेटिव। और शांत क्या है? पॉजिटिव। तो आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन डाल सकते हैं कि आई एम ए पीसफुल बीइंग, मैं एक शांत स्वरूप चेतन शक्ति हूं। डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना। इसी प्रकार से अगर आप अंदर से अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, आपसे कोई काम हो नहीं रहा है, आप अपने को बड़ा वीक वीक महसूस कर रहे हैं, इनकैपेबल आप महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी जो सोल है, हमारी जो चेतना है, उसकी एक पावर है शक्ति। उसकी 7 क्वालिटीज है, उसमें से एक क्वालिटी है शक्ति। तो आप कहें आई एम ए पावरफुल सोल। तो ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई अपने आप को खुश करने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। जब आपकी नेगेटिव अफर्मेशन ने आपको इतना घायल कर दिया, कमजोर कर दिया, तो क्या ये आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन आपको खड़ा नहीं कर देगी? ये है मैजिक मेडिटेशन का, जो ब्रह्मा कुमारी इसके यहां सिखाया जाता है। तो इसके लिए हमको जो बेसिक्स हैं वो समझने बहुत जरूरी होते हैं। जब आप वो सब समझ जाएंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं है मेडिटेशन करने की करने में। जैसे आप आज फर्स्ट डे कर रहे हैं, तो मैं आपसे दिल से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेडिटेशन सेशन कभी भी मिस ना करें। आपका मन नहीं भी करे तो भी आप जरूर बैठे रहें। आपके एटलीस्ट जो थॉट्स की स्पीड इतनी बढ़ रही है ना, वो तो स्लो डाउन होगी। बहुत अच्छा अनुभव नहीं किया, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग तो सेंटर में आएगी ना। तो इसलिए आप कोई भी मेडिटेशन सेशन मिस ना करें। बाकी सेशन तो मिस करने ही नहीं है, लेकिन मेडिटेशन सेशन बिल्कुल मिस नहीं करें। तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, ठीक है? करना चाहेंगे ना सभी? तो रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। अपनी बॉडी पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रखें। हाथ में अगर कोई चीज है उसे भी साइड में रख दें। अपनी आईज को ओपन रखें और सामने जो बैठे मेडिटेशन कराने के लिए योगी भाई बहन हैं, उनके ब्रकुटी में यहां पर देखें और भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा को भी आप दृष्टि लेकर के मेडिटेशन कर सकते हैं। और तीसरी बात, मेडिटेशन में ध्यान रखें कि आप अपने मन और बुद्धि को साथ साथ रखें। मन और बुद्धि बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मित्र हैं। इनको इकट्ठा रहना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मन में कहेंगे मैं शांत स्वरूप हूं और बुद्धि देख रही है कोई ऐसी इंसिडेंस जिसमें अशांति थी, तो मजा नहीं आएगा मेडिटेशन में। फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, विजुलाइजेशन। जब हम आपको कहें आप एक शांत स्वरूप हैं, तो आप अपने शांत स्वरूप को इमर्ज करें और विजुअलाइज करें, देखें। कर सकते हैं चारों बातों का पालन मेडिटेशन में? चलिए, तो जो आपको हम पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, केवल उन अफर्मेशंस को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर कराकर उन्हें विजुअलाइज करें, देखें। मैं एक शाइनिंग स्टार जहां तिलक लगाते हैं वहां पर बैठकर सारी बॉडी को कंट्रोल करता हूं। मैं एक चेतन शक्ति हूं, महसूस करें। मैं एक चेतना हूं, एनर्जी हूं। जो इन आंखों के द्वारा देख रही हूं अपने रियल स्वरूप को देखें। मैं चेतना मुख के द्वारा बोलती हूं, मैं एक ज्योति इस शरीर रूपी मंदिर में दीपक बनकर जगमग जगमग कर रही हूं। चले जाए अंदर, अपने वास्तविक रूप को विजुअलाइज करें। आपके अंदर असीम शक्तियां हैं। देखिए आपके अंदर कितनी शांति है। अब मुझे अंदर से रियलाइज हो रहा है कि आज दिन तक मैंने मन के द्वारा बहुत सारी नेगेटिव बातों को पकड़ा हुआ था, जो मेरा ही डिसीजन था। आज मैं जान गई हूं मुझे अपने मन में शांति की शक्ति भरकर शक्तिशाली बनना है। अब मैं अपने को इस शरीर और दुनिया से थोड़ा ऊपर उठता हुआ विचारों के द्वारा महसूस कर रही हूं। और मैं विचारों के द्वारा एक स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रही हूं। सूर्य चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्म लोक से भी ऊपर ब्रह्म लोक में बुद्धि के द्वारा पहुंच जाइए। यहां पर सुनहरी लाल प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। इसी प्रकाश में हम सभी आत्माएं अपने को देख रही हैं। और हम सभी के सुप्रीम टीचर वैल्यूज के सोर्स भगवान शिव को हम थर्ड आई के द्वारा देख रहे हैं। आज मेरे लिए कितनी सौभाग्य की वेला है जो मैं सुप्रीम टीचर ईश्वर के समीप आ पहुंची हूं। अब मन ही मन ईश्वर के साथ बातें कीजिए। प्यारे प्रभु, आप शांति के सागर हैं। आप सुप्रीम आर्किटेक्ट हैं। आप तो कमाल करते हैं। हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को हमें दिखा रहे हैं। इसलिए आप एक आर्किटेक्ट हैं, ग्रेट आर्किटेक्ट हैं। हमारे अंदर शक्ति पैदा कर रहे हैं। हमारी पावर्स को बढ़ा रहे हैं। आपको हम दिल से नमन करते हैं। अब धीरे धीरे वापिस हम हार्मनी हॉल में आते हैं और अब हम अपने अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाएं। बुद्धि के द्वारा और इमेजिन करिए, विजुलाइज कीजिए, आप कॉलेज में एंटर कर रहे हैं। कोई भी फोर्थ क्लास आपको सपोज विश नहीं कर रहा है या आपको देखकर इधर उधर हो जाता है, तो आपकी उसके लिए क्या रिएक्शन है? अपने को देखिए, आप उसके लिए पॉजिटिव रहते हैं, उसे समझाते हैं, या नेगेटिव सोचते हैं। अब आप अपने ऑफिस में सीट पर बैठ गए हैं, कोई आपको सही समय पर काम करके नहीं देता है तो आप इरिटेट होते हैं या उसको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। केवल यही पॉजिटिविटी हमको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लानी है और जिसका आधार है मेडिटेशन। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदेश बहन जी का, हमको इतनी सुंदर यात्रा आपने कराई। और कहा जाता है ग्रेट मैन आर बॉर्न ऑर्डिनरी, दे मे फेल 9 out of 10 times but when storms of life come they give and give and give but they do not give up। चाहे कोई भी परिस्थिति आए जीवन में, चाहे वो हमें फेवरेबल लग रही है या अनफेवरेबल लग रही है, अगर उस समय हम सिर्फ देते हैं और सिर्फ देते हैं तो आप देखेंगे जीवन कुछ और ही होगा। और ये देना ही मेडिटेशन हमको सिखाता है, माना दुआएं देना। ऐसे श्रेष्ठ विचारों को हम क्रिएट करें जो ना सिर्फ हमारे खुद के लिए दुआएं हों लेकिन हम जिससे भी मिलें उसको भी इन्हीं श्रेष्ठ दुआओं से भरपूर करें। और जब हमारा एक एक विचार दुआ हो जाएगा तो सोचिए आपके खाते में कितनी दुआएं होंगी। और आप आज इस स्थान पर आए हैं जहां की वाइब्रेशन ही आपको बहुत मदद करेगी, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब तक यहां पे हैं सिर्फ उसी टाइम अगर आप प्रैक्टिस कर लें, जिससे भी मिलेंगे जहां भी जाएंगे उनको सिर्फ दुआएं दीजिएगा। आज आपको खुद का पता चला, कल और भी आपके सेशंस होंगे, लेकिन एक सिंपल दुआ, पहले खुद के लिए, मैं परमात्मा का श्रेष्ठ बच्चा हूं, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। और जिससे भी मिलें, जिसको भी देखें, सिर्फ उसके लिए यही संकल्प करिएगा, ये भी परमात्मा का फरिश्ता है। और सिर्फ आज से लेके कल तक ही कर लीजिए, आपका कल जो सेशन होगा 7 बजे स्टार्ट होगा, अभी आप डाइनिंग में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उस टाइम तक ही आप सिर्फ एक संकल्प करिएगा, जिससे भी मिलते हैं ये परमात्मा का फरिश्ता है, और खुद के लिए भी, मैं भी परमात्मा का फरिश्ता हूं। और कल तक आप अनुभूति देखिएगा, कुछ अलग ही होगी। और यही मेडिटेशन का आधार। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय मिस्टर यरमल हरीश शेट्टी जी, आप डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ मुंबई बीजेपी के, आप एक रेनाउंड सोशल वर्कर भी हैं और वाइस चेयरपर्सन हैं एजुकेशन कमेटी बंत संघा मुंबई के, और वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। आपने आपको समाज रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, तो वो मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय यरमल शेट्टी जी को।
ओम शांति। मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय और यहाँ पर उपस्थित आप सभी ब्रह्मकुमारी से जुड़े हुए मेरा भाई बहनों को तहे दिल से सम्मान करता हूं। मैं एजुकेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, एजुकेशन मैं एक जनरेशन पीछे जाता हूं, जब हम स्कूल जा रहे थे तब एजुकेशन के इतना महत्व नहीं थे, हमें एजुकेशन के साथ साथ मेहनत करने को सिखाया गया। तो मेहनत करते करते हम मुंबई में आ गए। मुंबई में आके मेरा पिछले जनरेशन का एक होटल था, फिर उसमें मेहनत करते करते एक का दो हो गया, दो का चार हो गया, बट ये कहाँ तक रुकेगी बिजनेस में। तो एजुकेशन के साथ ये भी जरूरी है, आप बच्चों को और भी एजुकेशन सिखावे। तो मेरा मेरे हमें जो मुंबई में एजुकेशन के साथ साथ हम लोग एक बन संघ कमेटी है, उसमें हम लोग ने एजुकेशन का एक एक 40% जो एजुकेशन जो फीस नहीं भर पाते उन बच्चों को हम पढ़ाते। तो आजकल एजुकेशन भी बहुत महंगा हो गए, उसके बारे में भी मोदी जी भी उनके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एजुकेशन का एजुकेशन आज जन मीडियम लोगों को एजुकेशन देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं अभी होटलियर बनते 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 मैं अभी जुड़ा हूँ ब्रह्मा कुमारी से, तो वो भी एक एजुकेशन है। मैं ब्रह्मा कुमारी में गोराय का सेंटर में जाता हूँ, दो SSC से नीचे का जो 15 साल के नीचे के बच्चे लोग भी वहां पर आके मेडिटेशन करते हैं, वहां पर मुरली सुनते हैं। तो अगर एजुकेशन के साथ साथ ये ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन भी उनको सिखाया जाए तो आगे दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे बच्चे लोग। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है, खाली किताबों में पढ़ के जो एजुकेशन करे वो एजुकेशन नहीं है, और भी कुछ बहुत सारा एजुकेशन है, तो उसमें भी ध्यान देवे तो एजुकेशन में बहुत अच्छा पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर बुला, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ब्रह्मा कुमारी जी को। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यरमल शेट्टी जी का। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आदरणीय चेयरपर्सन राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी को। आप चेयरपर्सन हैं मीडिया विंग के और चीफ ऑफ मल्टीमीडिया ब्रह्मा कुमारीज के। जो ब्रह्मा कुमारीज के जो सेवाएं हैं जो देश विदेश तक पहुंचाने के आप निमित्त रहे हैं अपने विभिन्न चैनल्स के द्वारा, अवेकनिंग टीवी आप लोग सभी देखते होंगे, उस कार्यक्रम को उस चैनल्स को स्टार्ट करने के आप निमित्त बने हैं, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक बहुत ही कहा जाए एक आधार स्तंभ है। 60 वर्षों से अधिक समय से आप अपनी सेवाएं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रहे हैं। तो आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी।
सत्यम शिवम सुंदरम। मैं मेरे सभी गुरुजनों को वंदना करता हूं, क्योंकि मैं आज आप सबके सामने हूं। कारण पहला गुरु हमारी माँ है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है परंतु संस्कार जो दिया उन्होंने जो मुझे यहां तक पहुंचाया है। रात को भोजन देने के पहले कंपलसरी भजन करना जरूरी है, 2 मंत्र और कम से कम 5 भजन गाना पड़ता था, तो हम जल्दी जल्दी करते थे छोटे बच्चे। पर वो संस्कार ने आज इस ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे लगभग 4000 से ज्यादा परमात्मा के गुणों का, कर्तव्य का, श्रेष्ठ कर्म के बारे में प्रेरणा देने वाले गीत बनाने की मुझे सौभाग्य मिला। जैसे इन्होंने बताया मल्टीमीडिया के है, वैसे मेरा प्रोफेशन जो है वो इंजीनियर हूँ, HMT में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स में बेंगलोर में रहा, जहाँ मैंने एक डिसिप्लिन लाइफ का सीखा। इसका भी प्रेरणा पिताजी टीचर थे, तो उनको उस समय पर एजुकेशन का वैल्यू था। हालांकि जन्म बहुत ही एक छोटा सा विलेज में हुआ, आज भी जो शहर है उसका नाम ब्रह्मावर कहते हैं कर्नाटक में। तो संस्कार तो माँ बाप ने ही दिया। उसके बाद एक ही टीचर मुझे आज तक याद है, I am 84 इन द बॉडी का, जो तीसरी क्लास में एक टीचर और हाथ में एक छड़ी लेके रहते थे, और जब कभी हमारा कोई भी गलती होगी वो बेंच में खड़ा करेंगे, कराएंगे, और हाथ को दो चार वो करते थे, तो वो हमारे लिए एक जीवन में डिसिप्लिन लाइफ किस तरह से हम आगे बढ़े, तो वो भी मुझे याद आता है। परंतु इंजीनियरिंग में भी मैं जितनी आगे जा सकता है, क्योंकि फ्रेंच जर्मन्स इन सब के साथ काम करता था, तो स्वप्न एक था कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनेंगे ये वगैरह। फिर मेरा सौभाग्य था 1960 में जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा, पिताश्री जिसको हम कहते हैं, इनका मुझे दर्शन मिला। उनके बारे में पहली बात मैंने ये देखा, ही वॉज ए मल्टी बिलियनर ऑफ दैट टाइम। इनके बने हुए ऑर्नामेंट्स जो ब्रिटेन के रानी भी खरीदती थी, जहां मैं अभी राजस्थान में हूं, तो यहां का जो राजाएं थे तो उनके भी वो बहुत समीप थे, उनसे बहुत प्रभावित थे, उनको भी देते थे। जहां मैं मैसूर में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवा करता रहा, वहां के राजाएं भी बता रहे थे कि भाई ही वॉज ए बिग पर्सन, ग्रेट पर्सन। परंतु जब मैंने मिला, यहां देखा, एकदम साधारण, सिंपलेस्ट, इतना सरल, जो आप सबको देखने के लिए हम लोगों ने उनका एक कमरा अभी भी रखे हैं, जो आप देखेंगे, जो राजस्थान का जो रस्सी से जैसे बंधा हुआ इस प्रकार की कटिया है, और कैसे वो रहे, उनके साथ मुझे 9 साल रहने की सौभाग्य मिला। मेरा कहना यह है, माँ बाप संस्कार दिए हैं, उन्होंने जितना हो सके बच्चे के लिए उन्होंने किया है, उससे मैं यहां हूं। पर जैसे आप सब ने कहा, गुरुजी, मैंने आपको देखते ही फर्स्ट साइट में ही मैंने कहा, मेरे लाइफ में कोई गुरु हो तो मैं इनको ही मानता हूं, ये संकल्प मैंने किया। दक्षिण से आने वाला होते हुए भी जो आज विश्व में जितनी भी सांस्कृतिक जो शिक्षाएं द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शक्ति विशिष्टाद्वैत ये सब दक्षिण से आए हैं। बचपन से ही हम गुरुओं को मिलना उनके प्रवचन सुनना ये सब मेरे संस्कार से माँ बाप ने दिया हुआ संस्कार से मैं करता रहा। परंतु यहां मैंने पिताश्री जी से यही पूछा उनकी जीवन से तो प्रभावित हुआ और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम दादी जी कहते हैं जो इसी शिक्षा में वो लोगों ने जो सेवा की है सारे विश्व में 140 देशों में आज लगभग 60,000 डेडिकेटेड टीचर्स है तो ये कार्य यहां तक यूएन में भी हम लोग जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी भी कई बार यहां भी आए यहां भी रहे हैं और आज भी याद करते हैं कि सारे विश्व में फिर से हमारे सनातन धर्म को वापस लाने का जो कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो कर सकते हैं तो जिससे प्रभावित भी है तो इनके मुख से जो शब्द हम सुनते हैं कि भाई भारत विश्व गुरु बनेगा तो वो आप सभी शिक्षकों से ही हो सकता है दूसरों से नहीं। हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आज भले 4 पिलर्स है सब कुछ है अनेक प्रोफेशनल्स है परंतु जो शिक्षाविद जो है आप लोग आर्किटेक्ट्स है जो आगे आने वाले जिसको रामराज्य कहते थे गांधी जी पिताश्री कहते थे गोल्डन एज या सत्ययुग देवताओं का आप कहेंगे हमारा कौन सा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म देवी देवता हम इसलिए कहते हैं देवताओं की संस्कृति लाने का दूसरा कोई संस्कृति नहीं था अभी भी है। आप सभी बैठे हैं आप भी हमारे बहनें भी बैठे हैं तो हमको पूर्ण विश्वास है भारत फिर से स्वर्णिम युग लाएगा जिसकी हम वर्णन करते आए हैं। मैं इतना ही कहूंगा जो बहने सिखाते हैं तो कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी तो ना कोई वेद शास्त्र पुराण ये वो ये लोग गीता बहुत अच्छे सब तो कैसे ये सिखाएंगे। मैंने भी एक बार पिताश्री जी से पूछा कि इतनी अच्छी ये शिक्षा है सारे विश्व को हमको सिखाना है तो हम क्या करें कौन सा किताब ले तो उन्होंने कहा बच्चे किताबों से सिखाने वाले तो सारे विश्व में शिक्षक है परंतु वो विश्व कहां जा रही है वो आप जानते हैं। आज भारत में भी हर माँ बाप यही सोचते मेरा बच्चा कितना डॉलर कमा के आ सकता है उतनी शिक्षा देने के लिए प्रयास करते हैं जो हमारे शेट्टी साहब ने बताया कि बहुत महंगा है आज के शिक्षा। परंतु जो भारत में गुरुकुल शिक्षा जो था जिसको पूर्ण रीति से समाप्त कराया गया था कि वो उन्होंने सोचा कि भारत की संस्कृति सब चला जाएगा पर नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास द्विवेदी त्रिपाठी चतुर्वेदी जो केवल मुख से बच्चों को सिखा करके वो संस्कृति आज भी हम सबके अंदर है। गांव में भी जाके पूछेंगे आप कैसा है वो कहेगा ऊपर वाले की मेहरबानी है हमारी संस्कृति मीठा नहीं है। फिर से आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय घर घर में हर डिस्ट्रिक्ट हर तालुका हर गांव में भी एक आपको फैमिली ऐसे मिलेंगे जो इसके बारे में जानते हैं ये शिक्षा को अभ्यास करते हैं तो हम पूर्ण निश्चय से विश्वास से आपको कह सकते हैं कि क्योंकि आज आप भी हम सबके साथ दो तीन दिन रहेंगे तो भारत में फिर से वो संस्कृति हम ला सकेंगे। सिर्फ इतना ही है कि आध्यात्मिक के बारे में जो हम यही देखते हैं कि भाई जिसने संस्कृत पढ़े हैं सीखे हैं तो वही आध्यात्मिक दे सकते हैं, तो हमारी बहनों का वो नहीं है लक्ष्य। लक्ष्य है जो हम है, जैसे हम कर रहे हैं उसी को हम सरल भाषा में, जैसे बच्चे को पहली क्लास दूसरी तीसरी में जल ले आते हैं, इसी तरह से हम जितने दिन जितने वर्ष हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में संबंध में, ये नहीं सब कुछ छोड़ करके आश्रम में आ गए, नहीं, जितना संबंध और संपर्क में हम रहे हैं तो हम इसी शिक्षा को दूसरों को अपने अनुभव से बता रहे हैं, हमारे पास और कोई प्रूफ नहीं है। और शिक्षा जो देने की विधि है बिल्कुल जैसे आप बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं और वो पास होते हैं और आपका लक्ष्य रहता है हमारा स्कूल में रिपोर्ट कितना आ रहा है, कितने परसेंट हमारे बच्चे पास हुए, तो इसी प्रकार हमारी बहनें रात दिन यही प्रयास करते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं तो वो किस तरह से एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होने का। आज लाखों परिवार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं एंड दे आर अवर एग्जाम्पल्स एंड सैंपल्स। तो मैं यही कहूंगा कि आप दो तीन दिन आप यहां हमारे साथ रहेंगे तो हम कैसे जी रहे हैं, किस प्रकार से इस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। समय नहीं है आप सबके पास, व्यस्त है मुझे पता है कि आज के दिन में अपनी फैमिली को भी संभालना है, बच्चों का एजुकेशन भी संभालना है, सब कुछ करना है, बहुत बिजी है, इसीलिए वो उसमें हम आपका टाइम नहीं लेंगे। हम अमृत वेला जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संबंध में आते हैं तो उनको यही सिखाया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ समय जो है वो है अमृत वेला, जिसको कहते हैं सुबह 4 बजे कहीं भी होगा तो उठ करके ईश्वर का ध्यान करने का, जैसे बहन जी ने आपको बताया थोड़ा सा, दो तीन दिन में आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम मानसिक थॉट लैब जिसको कहा उन्होंने, तो इसी प्रकार हम लोग अपनी ही मन को अपनी ही संकल्प को जो वो रुकता ही नहीं है इतना फास्ट है तो उसको किस तरह से हम पॉजिटिव में ले जा करके, तो कैसे मेडिटेशन करते हैं, तो वो यहां शिक्षा अपने प्रैक्टिस से कराते हैं। दूसरा जो हमारा लाइफस्टाइल है, तो सारे लोग आजकल हमको यही सिखाते हैं कि भाई सुबह से शाम तक जो आपका लाइफस्टाइल है ना वो ठीक नहीं है, इसलिए बीमारी हो रहा है। तो यहां भी आपको एक ऐसा सुंदर लाइफस्टाइल आपको बता देंगे जिसमें आप भी कुछ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे हर एक भाई या बहने जहां भी आप जाएंगे 3 दिन खुश है, ऐसी क्या बात हो गई, कोई डॉलर का अकाउंट तो है नहीं, पूरा जीवन इन्होंने समाप्त अच्छी तरह से यहां त्याग करते हुए सेवा कर रहे हैं तो खुशी है उनके अंदर। तो आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, सुख शांति प्राप्त करना है, तो आपको यहां शांति भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। तो यहां से आप जाते हुए तो आपसे पूछेंगे जो भी मिलेंगे, भाई अबू गए थे कि भाई क्या ले आए हैं, तो आपका जो चेहरा जो है खुशी का वो देख करके उनको महसूस होगी कि भाई वहां कुछ है ऐसा जो इनको प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। ईश्वर का जो कार्य है, जिसको कहते हैं सदात्मानं सजामि हम, ऐसा समय आता है तो मैं स्वयं आकर के ये कार्य करता हूं। और ये भी कहा जाता है कलयुग में ईश्वर किस रूप में आएगा मालूम नहीं है, ये मेरा भी अनुभव है। मैं पिताश्री को देखने के बाद मेरा लाइफ का परिवर्तन हुआ। तो आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा कि बल लाइफ का जो एक मोड़ है, जो वो ईश्वर ने हम सबके सिर पे कृपा किए है, आशीर्वाद किए है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग सुने हैं, कहते हैं शिवानी दीदी का हमने सुना है, ये है, यहां तक पहुंचने के प्रयास करते हैं तो आ नहीं पाते हैं, पर आप सबकी ईश्वरीय कृपा से आ गए हैं और आप सब सुनेंगे। और हमारी दो चैनल है जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है, तो हमारे भाई बहनों की अनुभव का वो चैनल इतना अच्छा चल रहा है और आप अपने घर में फ्री टू एयर है देखेंगे और आप सुनते रहेंगे। तो मैं समझता हूं नेक्स्ट टाइम जो आप आएंगे तो आपने पूरे परिवार को ले आकर के इसका लाभ लेंगे, ऐसी आशा करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय करुणा भाई जी का हमको अपनी शुभ प्रेरणाएं देने के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगी आदरणीय भाई साहब से, करुणा भाई साहब से और आदरणीय सुदेश दीदी से कि मंच आसन हमारे जो अतिथि हैं उनका सौगात से, ईश्वरीय सौगात से आप सम्मानित करेंगे। आदरणीय करुणा भाई जी, मिस्टर यरमल शेट्टी जी का शॉल के द्वारा सम्मान कर रहे हैं और ईश्वरीय सौगात आदरणीय यरमल शेट्टी जी का, ईश्वरीय सौगात के साथ सम्मान। और आदरणीय सुदेश दीदी जी टोली देकर सम्मानित कर रहे हैं। मैं पुनः अपने मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आज इस कार्यक्रम के लिए। और आप सभी जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दो तीन दिन आप यहाँ रहेंगे, आपके बहुत सुंदर सेशंस बनाए गए हैं। सुबह की दिनचर्या आपकी मेडिटेशन सेशन से होगी और उसके बाद भी बहुत सुंदर सेशंस हैं और हम आशा करते हैं कि आप वो सभी सेशंस को बहुत प्रेम से सुनेंगे या कुछ और भी करेंगे। एक कहानी है कि एक बार एक गुरुजी के पास उनका शिष्य आया और वो बोला, गुरुजी आप इतनी अच्छी बातें सुनाते हैं, पूरा दिन आप इतनी अच्छी अच्छी धारणा युक्त बातें सुनाते हैं लेकिन किसी में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कारण क्या है? तो गुरुजी बोले, थोड़ा पहले उन्होंने सोचा, फिर अपने शिष्य को बोले, जाओ एक घड़ा मदिरा का ले आओ। अब जो शिष्य था वो तो अचंभित रह गया कि गुरुजी और शराब की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आज्ञाकारी था, लेके आ गया, पूरा घड़ा छल छला रहा था मदिरा से और लाके रख दिया। फिर गुरुजी बोले, अच्छा ये पूरा घड़ा मदिरा का पी जाओ। अब तो बेचारा देखता रह गया। फिर गुरुजी बोले, ये जो पूरा घड़ा आप पियोगे, ऐसे पीना कि एक भी बूंद आपके गले के नीचे ना उतरे, जैसे ही मुंह में भरो उसको थूक देना। शिष्य ने ऐसे ही किया, घूंट लेता गया उसे थूकता गया, घूंट लेता गया थूकता गया, पूरा घड़ा खाली हो गया। जब घड़ा खाली हो गया तो गुरुजी ने शिष्य से पूछा, नशा चढ़ा? क्या कहेंगे, नशा चढ़ा? तो शिष्य बोला, अरे गुरुजी एक घूंट एक बूंद तो गले के नीचे नहीं उतरी, नशा कैसे चढ़ेगा? बोले यही कारण है, एक बूंद नीचे नहीं उतरती। कहने का भाव, यहां पे आए हैं, बहुत सुंदर ज्ञान युक्त बातें आप सुनेंगे, घूंट तो भरेंगे, लेकिन उस बूंद को नीचे भी उतारना अर्थात दिल की गहराइयों से उस बातों को ग्रहण कीजिएगा, और एक भी पॉइंट आपने पकड़ लिया जिसे अपने व्यवहार में ले आए, अपने आचरण में ले आए, तो इस परमात्मा के घर से, जैसे कहा, आप अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भर कर लेके जाएंगे। ये एक सौगात होगी आपके लिए, और सिर्फ एक ज्ञान की सौगात नहीं, आपको ईश्वरीय सौगात भी मिलेगी। तो कहीं जाइए नहीं, 2 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठेंगे और उसके बाद सौगात की अनाउंसमेंट आप सभी के आगे रहेगी। तो थैंक यू एंड ओम शांति।